नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जो ग्रामीण भारत के विकास और शासन की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत रखता है।
जी नमस्कार।
ये विषय है पंचायती राज संस्थाओं यानी अपनी पंचायतें PRIs और समुदाय आधारित संगठनों यानी CBOs, खासकर स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs के बीच का तालमेल।
हाँ, जिसे सरकारी भाषा में अभिसरण या कन्वर्जेंस कहा जा रहा है।
बिल्कुल, अभिसरण। सोचिए, एक तरफ संवैधानिक रूप से चुनी हुई पंचायतें हैं और दूसरी तरफ वो जमीन से जुड़े ज्यादातर महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले स्वयं सहायता समूह।
जी।
जब ये दोनों ताकतें हाथ मिलाती हैं तो क्या होता है? आज हम इसी तालमेल के मायने समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और हमारी ये चर्चा आधारित है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय मतलब MoRDE के दिशा निर्देशों और अनुभवों पर।
हाँ, जिन्होंने इस PRIs SHG गठजोड़ को करीब एक दशक तक परखा है और अब इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है।
अच्छा, मतलब ये अब एक राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है।
जी हाँ, खासकर बहुआयामी गरीबी से लड़ने के लिए। और इसमें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी SRLMs पंचायतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
समझ गए। तो आज हम क्या जानने निकले हैं, मतलब इस चर्चा का हमारा मिशन क्या है?
देखें, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंचायतों और SHGs का ये गठजोड़ जरूरी क्यों है, इसे जमीन पर उतारा कैसे जा रहा है, इसके पीछे की सोच क्या है और इससे क्या उम्मीदें जुड़ी हैं।
ठीक है, चलिए तो फिर इस दिलचस्प गठजोड़ की परतें खोलते हैं।
बिल्कुल।
तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इस तालमेल की बुनियाद कैसे रखी जाए। स्रोत बताते हैं कि शुरुआत स्वयं सहायता समूहों SHGs को मजबूत करने से होती है।
जी।
उन्हें ग्राम पंचायत की समितियों में शामिल करने की बात कही गई है, जैसे वो ग्राम पंचायत योजना सुविधा टीम GPPFT और ग्राम पंचायत समन्वय समिति GPCC। ये समितियां क्या है और इनमें SHGs की भागीदारी क्यों जरूरी है?
बिल्कुल, देखिए, ये समितियां ग्राम पंचायत के कामकाज का एक बहुत अहम हिस्सा है। GPPFT वो मंच है जहां गांव के विकास का खाका मतलब प्लान तैयार होता है।
अच्छा।
और GPCC वो जगह है जहां अलग अलग विभाग और समूह मिलकर काम करने की रणनीति बनाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। अब सोचिए, अगर इन समितियों में SHG की महिलाएं शामिल होंगी तो क्या होगा?
हाँ,
इसका सीधा मतलब है कि गांव की सबसे जरूरतमंद और हाशिए पर मौजूद आवाजें, खासकर महिलाओं की आवाजें, वो सीधे योजना बनाने की प्रक्रिया में शामिल होंगी।
मतलब उनकी जरूरतें सीधी टेबल पर आएंगी।
एकदम। जब SHG सदस्य गांव की जरूरतों पर आधारित योजनाएं बनाने में हिस्सा लेते हैं, जैसे वो VPRP यानी विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान या GPDP यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान,
जी,
तो ये योजनाएं सिर्फ कागजी नहीं रह जाती, वो हकीकत के ज्यादा करीब होती हैं, लोगों की असली जरूरतों को दर्शाती हैं।
और क्या इससे योजनाओं की प्राथमिकताएं भी बदलती हैं?
हाँ बिल्कुल, अक्सर देखा गया है कि जब SHG महिलाएं योजना प्रक्रिया में शामिल होती हैं तो पीने का पानी, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों पर ज्यादा ध्यान जाता है।
अच्छा,
जिन्हें शायद पहले उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती थी।
ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन क्या सिर्फ समितियों में शामिल होना काफी है? उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उनकी क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है, मतलब वो बोल पाए अपनी बात?
बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ शामिल करना काफी नहीं है, उन्हें अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने के लिए तैयार भी करना होता है। इसके लिए उनकी क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर दिया गया है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे ग्राम सभा की बैठकों में आत्मविश्वास से बोल सकें, अपनी मांगे रख सकें।
इसके लिए कुछ खास तरीके भी अपनाए जाते हैं, जैसे स्रोत में रैलियों, नुक्कड़ नाटकों का जिक्र है।
हाँ हाँ, जागरूकता रैलियां, नुक्कड़ नाटक जैसे तरीके अपनाए जाते हैं ताकि समुदाय में भी एक माहौल बने और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि वो सरकारी योजनाओं को समझें और अपनी मांगों को उन योजनाओं से जोड़ सकें।
अच्छा, स्रोत में कुछ खास उपकरणों का भी जिक्र है, जैसे वो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल यानी PRA के तरीके, धन रैंकिंग और गरीबी मूल्यांकन उपकरण PAT, ये क्या है और कैसे काम करते हैं?
हाँ, ये उपकरण इस पूरी प्रक्रिया की आप कह सकते हैं जान है। PRA का मतलब ही है कि गांव के लोग खुद मिलकर चीजों का मूल्यांकन करें।
खुद कैसे?
जैसे धन रैंकिंग है, इसमें गांव के लोग आपसी सहमति से तय करते हैं कि उनके समुदाय में कौन सबसे गरीब है, कौन सबसे ज्यादा जरूरतमंद है।
अच्छा, ये किसी बाहरी सर्वे से अलग हुआ?
बिल्कुल, ये ज्यादा सटीक और भरोसेमंद होता है। इसी तरह गरीबी मूल्यांकन उपकरण PAT भी परिवारों की आर्थिक सामाजिक स्थिति को बारीकी से समझने में मदद करता है।
तो इसका फायदा क्या होता है?
इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनसे उन अति गरीब परिवारों की पहचान होती है जिन्हें विकास योजनाओं, खासकर जीपीडीपी के तहत मिलने वाले लाभों की सबसे ज्यादा जरूरत है। इससे सुनिश्चित होता है कि सरकारी मदद सही लोगों तक पहुंचे, लीकेज कम हो।
और वो नागरिक साक्षरता प्रशिक्षण, उसका क्या रोल है?
हाँ, वो भी बेहद जरूरी है। एसएजी सदस्यों को या ग्राम संगठन वीओ के सदस्यों को, वीओ मतलब कई ऐसे जीज को मिलाकर बनी एक संस्था, उन्हें उनके नागरिक अधिकारों, जिम्मेदारियों और सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले हकों के बारे में जागरूक किया जाता है। उन्हें ये भी समझाया जाता है कि पंचायतें कैसे काम करती हैं, ताकि वे पूरी प्रक्रिया में बेहतर ढंग से भाग ले सकें। ये उन्हें सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक बनाता है।
ठीक है, तो पहला स्तंभ हुआ एसएचजीज और समुदाय को सशक्त करना, उन्हें जानकारी और आवाज देना।
बिल्कुल।
लेकिन ये आवाज पंचायत तक कैसे पहुंचेगी? ये दोनों समूह मिलकर कहां काम करेंगे?
यहां उन मंचों की बात आती है जहां ये तालमेल असल में होता है, स्रोत में संयुक्त कार्यशालाओं और ग्राम संगठन अभिसरण समितियों वीओसीज का जिक्र है। ये क्या भूमिका निभाते हैं?
देखिए, जब दो अलग अलग संस्थाओं को साथ लाना हो तो उन्हें आपस में बात करने, एक दूसरे को समझने के मौके देने होते हैं।
हाँ, स्वाभाविक है।
संयुक्त कार्यशालाएं यही काम करती हैं। यहाँ पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि और एसएचजी के नेता एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे की भूमिका समझते हैं और मिलकर काम करने के अवसर तलाशते हैं। एक कॉमन ग्राउंड बनता है।
और ये वीओसीज क्या है? ग्राम संगठन अभिसरण समिति।
हाँ, वीओसी ग्राम पंचायत स्तर पर बनाई जाती है। ये एक तरह से एसएचजी नेटवर्क और पंचायत के बीच पुल का काम करती है।
अच्छा, एक ब्रिज की तरह। बिल्कुल। ये समितियां जो अक्सर ग्राम पंचायत स्तर के संघ जीएलपीएल जैसे मौजूदा एसएचजी मंचों का ही इस्तेमाल करती हैं, योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने, लोगों को लामबंद करने और योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी में मदद करती हैं।
मतलब ये तालमेल को जमीन पर उतारती हैं।
हाँ, ये सुनिश्चित करती हैं कि तालमेल सिर्फ बैठकों तक सीमित न रहे, जमीन पर भी दिखे।
और एक और समिति का जिक्र बार बार आता है, ग्राम पंचायत समन्वय समिति जीपीसीसी। उसे मजबूत करने पर क्यों जोर दिया जा रहा है?
जीपीसीसी एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना है। सोचिए, गांव में सिर्फ पंचायत और एसएचजी ही नहीं है।
हाँ, और भी लोग हैं।
स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी सेविका हैं, स्कूल के शिक्षक हैं, मनरेगा के कर्मचारी हैं। ये सब अपने अपने दायरे में काम करते हैं। जीपीसीसी वो औपचारिक मंच है जहाँ पंचायत के प्रतिनिधि, एसएचजी संघों के प्रतिनिधि और ये सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ता एक साथ बैठ सकते हैं।
अच्छा, सब एक जगह।
हाँ, यहाँ वे जानकारी साझा करते हैं, अपनी अपनी योजनाओं में तालमेल बिठाते हैं और गांव की समस्याओं का मिलकर समाधान ढूंढते हैं। इसे सक्रिय करने का मतलब है कि गांव के विकास के लिए एक टीम तैयार करना जो मिलकर काम करे, कोई साइलो में काम न करे।
ये तो वाकई तालमेल की एक ठोस व्यवस्था लगती है। इसी कड़ी में स्रोत में एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है, सामुदायिक आधारित निगरानी प्रणाली, कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CBMS।
हाँ।
ये क्या है और ये कैसे काम करता है? ये सुनने में काफी शक्तिशाली लगता है।
ये वाकई शक्तिशाली है। CBMS का मतलब है कि समुदाय, मतलब गांव के लोग, खुद सरकारी सेवाओं की निगरानी करें।
खुद कैसे? जैसे
उदाहरण के लिए, गांव के लोग मिलकर ये देखें कि राशन की दुकान PDS ठीक से चल रही है या नहीं, क्या सबको पूरा राशन मिल रहा है, मनरेगा में काम सही से मिल रहा है या नहीं, मजदूरी समय पर मिल रही है या नहीं, आंगनवाड़ी में बच्चों को पोषण आहार मिल रहा है या नहीं। वे सेवाओं की गुणवत्ता, उनकी पहुंच, उनमें आने वाली दिक्कतों का खुद मूल्यांकन करते हैं, सोशल ऑडिट जैसा कुछ।
तो इससे होता क्या है?
पहली बात, पारदर्शिता बढ़ती है क्योंकि सब कुछ सबके सामने होता है। दूसरी, जवाबदेही तय होती है।
अच्छा,
जब समुदाय खुद निगरानी करता है तो सेवा देने वालों पर दबाव बनता है कि वे अपना काम ठीक से करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
हाँ,
इस निगरानी से जो भी बातें सामने आती हैं, जो कमियां पता चलती हैं, उन्हें जीपीसीसी की बैठक में रखा जाता है।
ओ अच्छा, वापस उसी समन्वय समिति में।
बिल्कुल। फिर जीपीसी मिलकर उन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाती है। तो ये सिर्फ निगरानी नहीं है बल्कि सुधार की एक पूरी प्रक्रिया है।
मतलब फीडबैक लूप पूरा होता है।
एकदम। ये सत्ता के समीकरण को थोड़ा बदलता है। अब गांव के लोग सिर्फ योजनाओं के लाभार्थी नहीं बल्कि सेवाओं के ऑडिटर बन जाते हैं।
ये तो कमाल की बात है, समुदाय को सीधे तौर पर निगरानी का हक देना। अच्छा, अब तीसरे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, लैंगिक समानता। ये PRI SHG तालमेल इस दिशा में कैसे काम करता है? श्रोत में पीआरआई सदस्यों के लिए लिंग संवेदनशील कार्यशालाओं की बात कही गई है।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। अक्सर विकास योजनाओं या शासन की प्रक्रियाओं में महिलाओं की जरूरतों और नजरिए को अनदेखा कर दिया जाता है।
हाँ, ये तो होता है।
इसलिए पंचायत के सदस्यों, खासकर पुरुष सदस्यों को लिंग समानता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
इसका मकसद क्या होता है?
मकसद ये है कि वे समझें कि उनके फैसलों का महिलाओं और पुरुषों पर अलग अलग असर कैसे पड़ सकता है, और वे अपनी योजनाओं और व्यवहार में लैंगिक समानता को कैसे शामिल करें, मतलब जेंडर मेनस्ट्रीमिंग हो।
और इसके साथ ही निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों EWRS पर भी फोकस है।
बिल्कुल, एक बहुत बड़ा फोकस है निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों, इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, EWRs की नेतृत्व क्षमता को विकसित करना। हम जानते हैं कि पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण है।
हाँ, एक तिहाई।
जी, लेकिन कई बार वे सिर्फ नाम के लिए प्रतिनिधि रह जाती हैं, या उनके पुरुष रिश्तेदार काम करते हैं।
हाँ, प्रधान पति वाला कॉन्सेप्ट।
बिल्कुल, इसलिए इन महिला प्रतिनिधियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे आत्मविश्वास से अपनी भूमिका निभा सकें, बैठकों में अपनी बात रख सकें, महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठा सकें और प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सकें। ये उन्हें सिर्फ प्रतिनिधि नहीं बल्कि वास्तविक नेता बनाने की कोशिश है।
ये बहुत जरूरी है, और स्रोत में महिला सभाओं को संस्थागत बनाने का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? क्या ये ग्राम सभा से अलग है?
संस्थागत बनाने का मतलब है कि इसे एक स्थायी व्यवस्था बनाना, न कि कभी कभार होने वाली बैठक।
अच्छा,
महिला सभा ग्राम सभा से पहले होने वाली एक विशेष बैठक हो सकती है जहाँ सिर्फ महिलाएं शामिल होती हैं।
सिर्फ महिलाएं?
हाँ, यहाँ वे खुलकर अपनी जरूरतों, अपनी समस्याओं और विकास के लिए अपनी प्राथमिकताओं पर चर्चा कर सकती हैं बिना किसी झिझक के।
और फिर उन मुद्दों का क्या होता है?
इन चर्चाओं से निकले मुद्दों को फिर औपचारिक रूप से ग्राम सभा और GPDP योजना में शामिल किया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि महिलाओं की आवाज व्यवस्थित तरीके से योजना प्रक्रिया का हिस्सा बने, न कि सिर्फ औपचारिक खाना पूर्ति हो। इसके अलावा कुछ चुनिंदा पंचायतों में लैंगिक मूल्यांकन, जेंडर असेसमेंट करने का भी सुझाव है।
उससे क्या पता चलता है?
उससे ये पता लगाया जाता है कि पंचायत की योजनाओं और भागीदारी में लैंगिक समानता की स्थिति क्या है, कहाँ कमियां हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। ये सब मिलकर शासन को ज्यादा समावेशी और महिलाओं के प्रति जवाबदेह बनाने की कोशिश है।
स्पष्ट है कि लैंगिक समानता इस मॉडल का एक अहम हिस्सा है। अब आते हैं चौथे और अंतिम स्तंभ पर, जिसका जिक्र स्रोत करते हैं। ये सारा तालमेल, ये सारी प्रक्रियाएं आम नागरिक तक सेवाओं की पहुंच को कैसे बेहतर बनाती हैं?
अंततः सारा मकसद तो यही है कि गांव के हर नागरिक तक सरकारी योजनाएं और योजनाएं आसानी से और प्रभावी ढंग से पहुंचे।
हाँ, बिल्कुल।
इसके लिए एक ठोस सुझाव है, सभी ग्राम पंचायतों में नागरिक सेवा केंद्र, सिटीजन सर्विस सेंटर्स स्थापित करना।
अच्छा, एक तरह का सिंगल विंडो।
बिल्कुल, सोचिए गांव के व्यक्ति को अलग अलग योजनाओं की जानकारी या आवेदन के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, बल्कि एक ही जगह पर सारी सुविधा मिल जाए।
ये तो बहुत सुविधाजनक होगा।
हाँ, इन केंद्रों में एक समर्पित कर्मचारी होगा जिसका काम होगा, पहला, आम लोगों को सरल भाषा में सरकारी योजनाओं, उनकी पात्रता शर्तों और आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देना। दूसरा, लोगों से भरे हुए आवेदन पत्र लेना और उन्हें आगे बढ़ाना जिससे प्रक्रिया आसान हो, और तीसरा, पंचायत की सेवाओं से जुड़ी नागरिकों की शिकायतें सुनना और उनका समाधान करने में मदद करना।
मतलब एक तरह से पंचायत का हेल्प डेस्क।
बिल्कुल, हेल्प डेस्क या सिंगल विंडो सिस्टम जैसा।
क्या इसका कोई उदाहरण है कहीं?
हाँ, श्रोत में झारखंड का उदाहरण भी दिया गया है जहाँ पंचायत सहायक इसी तरह की भूमिका निभा रहे हैं। वे ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिकों को योजनाओं से जोड़ने और उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं।
अच्छा,
इस तरह के केंद्र सेवा वितरण को न केवल ज्यादा कुशल बनाते हैं बल्कि ज्यादा पारदर्शी और नागरिक केंद्रित भी बनाते हैं।
तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही व्यापक और सोच समझकर बनाई गई रणनीति लगती है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस PRI-SHG तालमेल मॉडल के मुख्य तत्व क्या है, जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं?
बिल्कुल, अगर हम मुख्य बातों को देखें तो पहला, SHG सदस्यों और समुदाय की क्षमता बढ़ाना, उन्हें जानकारी देकर, नागरिक साक्षरता के जरिए और उन्हें ग्राम पंचायत की समितियों में सक्रिय भागीदारी दिलाकर,
सशक्तिकरण।
दूसरा, तालमेल के लिए मजबूत मंच बनाना, जैसे GPC को सक्रिय करना और VOSC जैसी समितियों के जरिए SHG नेटवर्क और पंचायत के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाना।
सही।
तीसरा, जवाबदेही और पारदर्शिता लाना, वो सामुदायिक आधारित निगरानी प्रणाली CBMS के जरिए, जहां लोग खुद सेवाओं की गुणवत्ता परखें।
जी।
चौथा, लैंगिक समानता को शासन के केंद्र में लाना। इसके लिए ट्रेनिंग, महिला नेताओं का क्षमता विकास और महिला सभाओं को संस्थागत बनाना शामिल है।
बिल्कुल।
पांचवा, सबसे जरूरतमंदों तक पहुंचना। PRA जैसे सहभागी तरीकों से अति गरीब परिवारों की पहचान करना और उन्हें योजनाओं में प्राथमिकता देना।
हाँ, वो धन रैंकिंग वगैरह।
हाँ। और छठा, सेवाओं को बेहतर बनाना। नागरिक सेवा केंद्रों की स्थापना और जो फ्रंटलाइन कार्यकर्ता हैं उनकी क्षमता बढ़ाकर।
और ये सब अलग अलग नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब विच्छिन्न प्रयास नहीं है। इन सभी तत्वों को एक साथ लागू करने और सभी हितधारकों, पंचायत, SHG, सरकारी विभागों के बीच निरंतर सहयोग और क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है। ये एक सतत प्रक्रिया है, कोई एक बार का कार्यक्रम नहीं।
ये वाकई स्पष्ट है कि ये मॉडल सिर्फ कुछ प्रशासनिक सुधारों का नाम नहीं है, ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने, सरकारी सेवाओं को लोगों के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाने,
हाँ बिल्कुल,
और विकास के लाभों को सबसे जरूरतमंद लोगों, खासकर महिलाओं तक पहुंचाने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये सही मायने में नीचे से ऊपर यानी बॉटम अप विकास के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।
जी।
आज की चर्चा से ये साफ हुआ कि कैसे दो अलग अलग तरह की संस्थाएं, एक संवैधानिक और दूसरी समुदाय आधारित, मिलकर ग्रामीण विकास में एक नई ऊर्जा ला सकती हैं।
हाँ।
लेकिन एक सवाल फिर भी मन में उठता है जिस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है।
जी बताइए।
मिक्स कैसे सुनिश्चित होगा?
ये एक बहुत ही वैध सवाल है।
स्रोत कहते हैं कि SHGs को समितियों में शामिल किया जाएगा, उन्हें आवाज दी जाएगी, लेकिन ये कैसे पक्का किया जाए कि उनकी आवाज सिर्फ सुनी ना जाए बल्कि उस पर अमल भी हो?
हाँ, ये चुनौती तो है,
खासकर तब जब पंचायतों के पास संवैधानिक अधिकार और संसाधन होते हैं और SHG नेटवर्क शायद उतना शक्तिशाली ना हो। क्या ये साझेदारी वास्तव में बराबरी की होगी या कहीं पंचायतें हावी तो नहीं रहेंगी?
ये एक व्यावहारिक चुनौती है और इसका समाधान शायद निरंतर संवाद, पारदर्शिता और SHG नेटवर्क को लगातार मजबूत करने में ही है। ये देखना होगा कि ये अभिसरण जमीन पर कितना सार्थक हो पाता है।
बिल्कुल, ये एक व्यावहारिक चुनौती है जिस पर लगातार ध्यान देने की जरूरत होगी ताकि ये अभिसरण सिर्फ कागज पर ना रहकर जमीन पर भी सार्थक हो।
सही बात है।
इस विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित संगठनों के बीच तालमेल के इस दिलचस्प और महत्वपूर्ण मॉडल को समझने में मदद मिली होगी।
मुझे भी यही उम्मीद है।
ये मॉडल ग्रामीण भारत के भविष्य के लिए काफी मायने रखता है। धन्यवाद।
धन्यवाद।